राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्रियाओं का करना क्रियाओं से ऊंचा उठने के लिए है। पदार्थों का प्रयोग पदार्थों से ऊंचा उठने के लिए है। तो पदार्थ और क्रिया ऐसे ऊंचा उठने से ही तत्व की प्राप्ति होगी। पदार्थ और क्रिया ये सब के सब प्रकृति के कार्य हैं। इन क्रियाओं में और पदार्थों में अगर आसक्त रहेंगे, इसमें घुले मिले रहेंगे, इनके ही साथ रहेंगे तो जन्म मरण नहीं होगा, तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें लिखा है कि भाई ऐसा प्रसंग आया है कि जिस क्रिया का आरंभ होगा उसका अंत भी होगा ही। क्रिया निरंतर होती ही नहीं, पदार्थ निरंतर रहते ही नहीं, आदि अंत वाले होंगे। अरे क्रियाओं के द्वारा अनंत परमात्मा की प्राप्ति होना कठिन है, तो नहीं है। क्रियाओं के द्वारा तो होगा ही नहीं, कठिन क्या हो जाए, नहीं संभव ही नहीं है। क्रियाओं में भाव रहता है, वो भाव परमात्मा की प्राप्ति करता है। जैसे क्रिया है साधारण काम करते, व्यापार है, खेती है, लेन देन है, व्यापार दलाली आदि क्रियाएं है, इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये किए जाए केवल दूसरों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जाए। तो व्यापार से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, खेती आदि करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, कुटुंब के पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्रियाओं का उपयोग केवल दूसरों के लिए किया जाए, पदार्थों का उपयोग औरों के लिए किया जाए, तो पदार्थ और क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है। तो संसार की तरफ होने से पीछे अवशेष तत्व रह जाता है, तो प्राप्ति हो जाती है उसकी। परंतु ये निष्काम भाव से किए जाए, अपने लिए नहीं, मात्र संसार के हित के लिए किया जाए, तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता। भीतर में सबके हित की प्रीति हो, भाव सबका हित करने का हो, तो क्रियाओं के द्वारा क्रियाओं से ऊंचे उठ जाएंगे। अपने लिए करेंगे तो क्रियाओं में दब जाएंगे, पदार्थ हमारे लिए होंगे तो हम पदार्थों के क्रियाओं के गुलाम हो जाएंगे, दब जाएंगे। अगर दूसरों के लिए किए जाएंगे तो ये प्रकृति का कार्य है, इसका प्रवाह सदा ही संसार की तरफ ही हो, सबके हित करने के लिए ही हो, सेवा करने के लिए हो। तो इस तरह से कर्मयोग द्वारा प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञान योग भी गुणा गुणेशु वर्तन्ते, क्रिया पदार्थों में पदार्थ, क्रियाओं में इंद्रियां आदि, ये क्रियाओं वर्तती रहे, इधर ही अपना स्वार्थ न हो तो उससे तत्व की प्राप्ति होगी। तो क्रियाओं को करना निषिद्ध नहीं है, क्रियाओं से हम प्राप्त कर रहे हैं ये बात नहीं है। जैसे धन से चीजें मिलती है, कोई चीज लो तो के देने से, रुपया देने से, बस इसके लिए किया जाए तो भाव उसमें है। और सावधानी क्या की? स्वार्थ के त्याग की तो सावधानी हो, और भाव दूसरों के हित का हो, ये सावधानी रखे। अपने लिए करेगा वो घूसखोरी हो जाएगी, वो अन्याय हो जाएगा। अपने लिए नहीं रहे, सदा सावधान रहें, त्याग में रहें, जिससे क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति का सहायक हो जाती, प्राप्ति कराने वाली हो जाती है। तो क्रिया और पदार्थ सब दूसरों के हित के लिए, औरों के लिए ही। ऐसा क्यों किया जाए? शरीर तो माता पिता से मिला है और संसार की सहायता से ही पला है, बड़ा हुआ है, तो इनमें अपना कुछ नहीं है, ये तो संसार की ही चीज है, तो संसार की चीज संसार के बहने से हम ऊर्ण हो जाते हैं, ऋण रहित हो जाते हैं, ऋण रहित होने पर स्वरूप प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि दूसरों से हमने काम भी करवाया है, क्रियाएं भी ली है, पदार्थ भी लिए हैं, सेवा भी करवाई है और विद्या भी सीखी है, कलाएं भी सीखी है, बहुत सी पदार्थों की चीजें क्रियाओं हमने संसार ली है, और ली है वो कर्जा है, वो कर्जा उधारने के लिए उनके लिए करना है। तो क्रिया नहीं है वो कर्म योग है, क्रिया नहीं है कर्म है, कर्म भी कर्म योग है, योग होते है समता में। क्रिया लाभ हानि जय पराजय जो हो जाए, सुख दुख हो जाए, अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए, उसमें निर्विकार रहे, तो वो निर्विकार अंश है, वो परमात्मा की प्राप्ति करने का हेतु है, क्रिया हेतु नहीं, क्रिया तो त्याग है। कभी ऐसे समझना है कि दूसरों के लिए करनी है तो क्रिया औरों के लिए करनी, पदार्थ औरों के लिए, संबंध औरों के लिए, हेतु औरों के लिए, तो ते प्राप्त अंतिमा में सर्वभूति ते रता, पर हितु सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ास मन नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। तो दूसरों के हित के लिए किया जाए, अपना तो निर्वाह तो होगा, क्रिया करने की शक्ति है वो तो हम अन्न जल वस्त्र मकान स्वीकार करेंगे, उनके द्वारा ही होगा ना जीवन भी, तो उतना करे तो उतने के लिए नहीं, हित के लिए, दूसरों के हित के लिए करे। तो क्रियाओं के अपेक्षा न हो ऐसा क्या है, क्रियाओं की अपेक्षा वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करोगे, तो वहां क्रियाओं की नहीं है, वहां तो कारण निरपेक्ष मैंने बात कही है, वो कारण निरपेक्ष तो होगा ही, परंतु कर्तृत्व भी होगा। जैसे ज्ञान योग में क्रियाएं की जाएगी तो वह क्रियाएं कर्तृत्व रहित होगी, कर्तृत्व अभिमान होगा तब तो फंसना होगा। तो कर्ण तो कर्ण निरपेक्ष नहीं है, कर्तृत्व भी रहित होगा, कर्ण से कर्तृत्व से रहित होंगे जितने कारक है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण जितने कारक है, वे क्रियाओं की सिद्धि में है, क्रियाओं की सिद्धि होगी, पदार्थों में सिद्धि होगी, वे परमात्मा को प्राप्ति नहीं करा सकते, परंतु परमात्मा के बीच में जो आग लगी हुई है, हमारे स्वार्थ की भावना, सब अपने लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, अपने आराम के लिए करते हैं, अपने मान बढ़ाई के लिए करते हैं, वाह वाह के लिए करते हैं, परो के लिए करते हैं, तो वो अपने लिए कर्म है नहीं, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराएगा, वो तो फंसाएगा, संसार में फंसेंगे। क्रिया पदार्थों के लिए किया जो पदार्थों की गुलामी होगी और क्रियाओं की प्रसन्नता होगी, इस बात से क्रिया और पदार्थ नहीं है, ये केवल परमात्मा के लिए किया जाए तो वो परमात्मा के लिए किया, भक्ति हो जाएगी, संसार के लिए कर्म योग हो जाएगा, और अपना संबंध छोट हो तो वे प्रकृति के द्वारा होगी, गुणागुण सुवर्धन देखा से इंद्रिया सुवर्धन से होगा, दूसरे में सर्वभूति रहता होगा, और ज्ञान योग में अपने लिए है ही नहीं, केवल संसार के हित के लिए, उनके सेवा के लिए होगी, और दोनों से ऊंचे उठे तो भगवान के लिए होगा, तो लक्ष्य हमारा भगवान होगा, क्रिया नहीं होगी, उनमें भाव की प्रधानता होगी, ज्ञान योग कर्म योग में विवेक की प्रधानता होगी, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य लाभ हानि रही, जो विवेक है अलग अलग किसके लिए क्या किया जाए, उस विवेक की प्रधानता है, तो उसमें क्रिया से प्राप्ति नहीं होती है, विवेक से होती है, विवेक से जड़ता का त्याग होता है, और परमात्मा के लिए किया जाए तो परमात्मा में समर्पण होगा, क्रियाएं भी समर्पित हो जाएगी, पदार्थ भी समर्पित हो जाएंगे, शरीर भी समर्पित हो जाएगा, स्वयं भी समर्पित हो जाएगा भगवान के ही, तो भगवान की कृपा से उसको प्राप्ति होगी, उसमें क्रियाओं के द्वारा नहीं है, क्रियाओं का अर्पण करने से अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का हो जाए तो भगवान के अर्पित हो जाएगा। तो भगवान के अर्पण से भगवान कहते हैं सब धर्मान त्यज परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुख। सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो भगवान के अर्पण करने से हुआ, तो उसमें क्रियाओं की प्रधानता नहीं है, अर्पण की प्रधानता है। और अर्पण भी तब होगा जब अर्पक खुद उसका हो जाएगा, तो स्वयं भी उनका है, इंद्रियों भी उनकी है, मन भी उनका है, बुद्धि भी मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि भी भगवान के अर्पित हो गई। तो अपनी क्रिया ना अपने तो क्रिया के औजार भी अपने नहीं रहे। कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां प्राण शरीर जिनसे क्रियाएं होती है वे भी अपने नहीं रहे, परमात्मा के ही रहे। तो परमात्मा की सब अपने आप ही परमात्मा के ही हुए, तो परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाएगी। उद्देश्य वही है, लक्ष्य वही है, क्रिया भी उन्हीं से ही की जाती है। तो ये श्रेष्ठ उपाय है कि भगवान के अर्पित हो जाए। यत करोषि यद अश्नासी यद जोशी ददासी यत यत तपस्या कौनते तत्पुरुष मदर्पण शुभाशुभे मोक्ष से कर्म बंधन ही। पांच क्रिया बताई, यद करोषि यद अश्नासी यद जोशी ददासी यद तपस्या, तीन क्रिया शास्त्री उभय क्रिया शरीर निर्वाह की, और यद क्रिया सामान्य क्रिया जो कुछ करे केवल भगवत प्रीत्यर्थ करे, भगवान के लिए करे, भगवान के अर्पण करे। तो भगवान के अर्पण करने से शुभ अशुभ कर्म है वो भी जो कर्म किया था जैसे कर्म बने थे शुभ अशुभ वे भगवान के लिए किया जाए तो अपने बंधन कैसे होगा, हमारे बंधन होगा ही नहीं। फिर हमारे बंधन क्या, हम भी नहीं रहेंगे, हम भी तो भगवान के ही हो गए, भगवान में मिल गए, भगवान को प्राप्त कर लिया, तो हमें अलग नहीं रहे तो क्रिया हमारी अलग कैसे रहेगी, सब कुछ भगवत अर्पित हो जाएगा। तो ये वास्तविकता है, जब ध्यान देना। मालिक रूप से तो है परमात्मा, प्रकृति के और पदार्थों के व्यक्तियों के वस्तुओं के सब के मालिक तो है परमात्मा, तो हमारा है ही नहीं, तो मालिक तो हुआ परमात्मा। धातु चीज हुई प्रकृति, जिससे क्रियाएं होती है, पदार्थ होते हैं, देवते वस्तु बनती है, धातु चीज है प्रकृति, अरे वो परमात्मा की। तो परमात्मा की चीज है वास्तव में, क्रिया पदार्थ हमारे है नहीं, थे नहीं और रहेंगे नहीं और हमारे हो सकते नहीं, सदा ही हमारे से दूर है, हमारे से अलग है, हमारी है ही नहीं ये चीजें। तो यथार्थ चीज है ये, संसार के लिए किया जाए तो मालिक भगवान है, धातु है प्रकृति, और मिला है संसार से, अपने को शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, मन बुद्धि आदि सामग्री ये सब मिली है संसार से, तो सामग्री संसार की और इनकी धातु चीज प्रकृति की, और मालिक परमात्मा अपने लिए करते बेईमानी है, अपनी है ही नहीं, अपने पदार्थ नहीं, अपनी इंद्रियां नहीं, अपना अंतकरण नहीं, अपना तो कुछ नहीं है, अपना तो ये बांधने वाला अभिमान है, और क्या अपना है, उनको अपना मानते हैं, मन इंद्रियों को अपनी मानते हैं, ये गलती होती है। तो वास्तव में ये क्रियाओं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, ये क्रियाएं हमारी है ही नहीं, पदार्थ हमारे है ही नहीं, वस्तु हमारी है ही नहीं, और क्रियाओं के करने की कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ये औजार भी प्रकृति के हमारे है ही नहीं, इनके द्वारा हमारे करने कल्याण कैसे हो जाएगा, इनके द्वारा हमें जो मिलेगा पदार्थ वो क्या होगा, जन्म मन देने वाला होगा, क्योंकि क्रिया भी अनित्य है, पदार्थ भी अनित्य है, व्यक्तियां भी अनित्य है, अनित्य के द्वारा अनित्य की प्राप्ति होगी, अनित्य की प्राप्ति वो साथ हमारे रह ही नहीं सकती, तो परमात्मा नित्य की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, ये चीजें ही हमारी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती हुई कि संसार सब तो हमारा नहीं, और संसार का भी छोटा सा अंश शरीर ये हमारा, ये बेईमानी है सभा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रति अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु पाता भूत है, उनसे ये शरीर रचा हुआ है, पांच भूत ही है ये, तो हमारी कहाँ है ये? अगर इनको अपना मानो तो संसार मात्र को अपना मानो, और संसार का अपना न मानो तो संसार के अंश एक शरीर को अपना कैसे मानते हो? ये तो बेईमानी है ना। तो बेईमानी से बचना है कि इनसे परमात्मा को थोड़ी खरीद लेंगे। ये जो हमारा अन्याय है उस अन्याय से बचना है। क्रियाओं के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे, हम क्या प्राप्त कर लेंगे? हमारी क्रिया है ना पदार्थ है ना क्रियाओं करने की कारण है, हमारे है ही नहीं, है ही संसार की है। तो और संसार इतना अनंत बड़ा संसार है, उनकी बहुत छोटी तुच्छ इंस हमारे पास है, तो उसी का अंश है, तो उसी को समर्पण कर दो, जिसकी चीज है उसको दे दो। तो परमात्मा का अंश तो स्वयं हो आप, ये तो परमात्मा के अंश, और आपको चीजें मिली है प्रकृति, और प्रकृति के कार्य से प्रकृति, प्रकृति का कार्य आपका है ही नहीं। अब साधन नहीं करने के औजार, नहीं करने की सामग्री अपनी नहीं, वो तो सब की सब संसार की है, तो जो संसार को दे देना है, तो परमात्मा को प्राप्त कैसे कर लोगे? जो आज चीज खरीदी जाती है, ध्यान देना तीजी बात, और जो आप चीज खरीदते हो वो खरीदते हो तो जितने आपके रुपये होते हैं उनसे कम मूल्य की चीज मिलती है। जैसे इस घड़ी को कोई 100 रुपये में खरीदे तो दुकानदार के 100 रुपये लगे हैं क्या? आप जितने चीज खरीदोगे वो खरीदने वाले के रुपये और पदार्थ है उनसे कम कीमती चीज मिलेगी। बल है हमारा, हमारे से निर्बल पर हमारा अधिकार होगा, हमारे से बल पर हमारा अधिकार कैसे होगा? तो हम उनके लिए कर्म करें, पदार्थ देवें और भेंट करें तो कब खरीदेंगे उनसे? नारायण 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 नारायण।
अगर हम सापेक्षता रखेंगे तब तक कर्तृत्व अभिमान नहीं मिलेगा ना?
कैसे मिलेगा? कर्तृत्व अभिमान नहीं चाहिए तो कर्ण कैसे रहेगा? तो स्वतंत्र कर्ता कर्ण कारकों में सब में कर्ता सबसे मुख्य है। कर्तव्य करना क्रिया पदार्थ भगवान के अर्पण करो, आप तो मिट जाएगी सब। है उसी जिसको दे दो, संसार को दे दो, प्रकृति को दे दो, परमात्मा दे दो। प्रकृति को दे दो ज्ञान योग हो गया, संसार को दे दो कर्म योग हो गया, या भगवान को दे दो भक्ति योग हो गया। योग अस्तय हो मेरा प्रभु, सीधी सीधी बात है। ऐसा हुई तो नारायण।